तो ये है मध्य लीला श्लोक नंबर 35। ताहं सिद्धि कारे हेना आनिये ना देखे हमारा दुष्कर कर्म तोमा है ते हाये ताहन सिद्धि करे न अन्य न देखे हमारा दुष्कर कर्म तुम है ते हाये ताहन सिद्धि करे न अन्य न देखे हमारा दुष्कार कर्म तुम है तिहाये ताहन सिद्धि करे न अन्यन देखिए हमारा दुष्कर कर्म तुम है तिहाये माता जी ताहं देर सिद्धि सक्सेस कारे मेक्स हेना सच आनिये अदर पर्सन ना नॉट देखिए आई सी अमारो माई दुष्कारा डिफिकल्ट टू परफॉर्म कर्मा वर्क तोमा यू हाई थे फ्रॉम हाई बिकम्स सक्सेसफुल श्री चैतन्य महाप्रभु कंटिन्यूड यू कैन परफॉर्म अ टास्क दैट इवन आई कैन नॉट डू बट फॉर यू आई कैन नॉट फाइंड एनीवन इन गोडा देश हु कैन फुलफिल माय मिशन देयर रिस्पॉन्सिबली Sri Chaitanya Mahaprabhu continued, you can perform a task that even I cannot do. But for you, I cannot find anyone in Goda Desha who can fulfill my mission there. Now the purport by Srila Prabhupada, this is a long purport, 2 pages. Lord Sri Chaitanya's mission is to deliver the fallen souls of this age. In this age of Kali, practically 10% of the population is fallen. Sri Chaitanya Mahaprabhu certainly delivered many fallen souls, but his disciples mainly came from the upper classes. For example, he delivered Srila Rupa Goswami, Srila Sanatana Goswami, Sarvabha Bhattacharya, and many others who were socially elevated but fallen from the spiritual point of view. Srila Rupa and Sanatana Goswami were situated in government service, and Sarvabha Bhattacharya was the topmost scholar of India. Similarly, Prakashananda Saraswati was a leader of many thousands of Mayavadi sannyasis. It was Sri Nityananda Prabhu, however, who delivered persons like Jagai and Malai. Therefore, Lord Chaitanya says, Amara duskara karma tamahai te hai. Jagai Madai were delivered solely by Nityananda's mercy. When they injured Nityananda Prabhu, Lord Chaitanya became angry and decided to kill them with the Sudarshan Chakra. But Nityananda Prabhu saved them from the Lord's wrath and delivered them. In the incarnation of Gonathai, the Lord is not supposed to kill demons, but is supposed to deliver them by preaching Krishna consciousness. In the case of Jagai and Madai, Sri Chaitanya Mahaprabhu was so angry that he would have immediately killed them. But Nityananda Prabhu was so kind that he not only saved them from death, but elevated them to the transcendental position. Thus, what was not possible for Chaitanya Mahaprabhu was carried out by Nityananda Prabhu. Similarly, if one is true to Gaudiya's service in the disciplic succession, he can even excel Nityananda's service. This is the process of disciplic succession. Nityananda Prabhu delivered Jagai and Madai, but a servant of Nityananda, by his grace, can deliver many thousands of Jagais and Madais. That is a special benediction of the disciplic succession. One who is situated in the disciplic succession can be understood by the results of his activities. This is always true as far as the activities of the Lord and his devotees are concerned. Therefore the Lord says, of all types of worship, worship of Lord Vishnu is best, and better than the worship of the Lord Vishnu is the worship of his devotee, the Vaishnava. By the grace of Vishnu, a Vaishnava can render better service than Vishnu. That is a special privilege of a Vaishnava. The Lord actually wants to see his servants work most gloriously than himself. For instance, on the battlefield of Kurukshetra, Sri Krishna provoked Arjuna to fight with all the warriors on the battlefield, would he die by Krishna's arrangement. Thus, the Supreme Personality of Godhead gives credit to a devotee who performs any heavy task perfectly. Hanumanji, the servant of Lord Ramchandra, served as another example. It was Hanuman who jumped over the sea in one leap and reached the shore of Sri Lanka from the shore of Bharatvarsha. When Lord Ramachandra chose to go there, he paved the way with stones, although by his will, the stones were able to float on the sea. If we simply follow Sri Chaitanya Mahaprabhu's instruction and follow in the footsteps of Sri Nityananda Prabhu, this Krishna conscious movement can advance, and even more difficult tasks can be performed by the preachers remaining faithful to the service of the Lord. Om Agyan Timirandasya Gyananjana Shalakya Chakshuran Militanyena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Vanovistam Sabitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Bandeham Shri Guru Shri Uta Padakamlam Shri Guru Vaishnavamsta Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raguna Tanvitam Tam Sajevam Sadvetam Savadhutam Prajana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitamsta Hey Krishna Karuna Sindho Dhinavandhu Jagatpate Govind Radha Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Rishabha Vancha Kalpatarbhyashta Kripa Sindhu Bhayavacha Paditanam Pavanebhyo Vaishnanebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadeva. Hare Krishna. Hare Krishna. Now I'll speak in Abhma Hindi. So this Madhya Leela Adhyay mein Chaitanya Mahaprabhu ji apne saathiyon ko aadesh de rahe the aur Vrindavan jane ki taiyari kar rahe the. Jaise ki Srila Prabhupada ji ne tatpurya mein kaha hai is shlok ke Chaitanya Mahaprabhu ji ne anek prakar ke vyaktiyon ko Chaitanya Mahaprabhu ji ne anek prakar ke vyaktiyon ko prabhavit kiya Krishna bhakti ke prati aur udharan diya gaya hai shastra mein Rupa aur Sanatan ka jo ki jinka samaj mein bahut uncha sthan tha. Aaj se 500 saal purv vishwa ka sabse dhani rajya tha Bengal ka rajya, aur us rajya ka shasan kaun kar rahe the? Rupa aur Sanatan. Phir Sarvabha Bhattacharya unhe Brihaspati ka avatar mana jata hai aur wo bahut hi unche koti ke kya the? Mayavadi pandit the. To is prakar aur phir Prakashananda Saraswati. Prakashananda Saraswati ke hajaron mayavadi shishya the. Aur Chaitanya Mahaprabhu jab Varanasi mein the unhone phir se apni ek divya leela prakat ki thi. Jo mayavadi sanyasi the wo Mahaprabhu ji ki alochna kar rahe the. Wo kehte the ki sanskrit ke itne bade vidwan hote hue kya ye paglon jaise naach rahe ga rahe hain, unhe to hamare sath baithkar kya karna chahiye? Vedanta Sutra ka adhyan karna chahiye. To Mahaprabhu ke jo bhakt the Tapan Misra aur Chandra Shekhar wo seh nahi sake ye alochna, aur unhone ek aisi yojna banayi ki Mahaprabhu ji us sabha mein gaye jahan ki ye hazaron mayavadi sanyasi upasthit the ek sabha mein Prakashananda aur Saraswati ke saath. Aur Mahaprabhu ji ne atyant nimrata apne vyavhar mein prakat ki. Jab Mahaprabhu ji ne pravesh kiya us sabha mein to ye mayavadi sanyasi ne sab baithe hue the unche manch mein. पर महाप्रभु जी कहां बैठे? वो बैठे जहां की पांव धोते हैं लोग, और वहां उन्होंने अपने चेहरे से लाखों सूर्यों का प्रकाश प्रकट किया. तो जब प्रकाशानंद सरस्वती उनके साथियों ने ये प्रकाश देखा, लाखों सूर्यों का प्रकाश प्रकट हो रहा है उनके चेहरे से, तो वो समझ गए कि साधारण व्यक्ति नहीं है. और फिर उनको मंच पर लेकर आए और फिर महाप्रभु जी ने उन सबको प्रभावित किया वैष्णव के प्रति. तो चैतन्य महाप्रभु जी ने इस प्रकार अनेक व्यक्तियों को प्रभावित किया कृष्ण भक्ति के प्रति. और तात्पर्य में प्रभुपाद जी नित्यानंद जी के विषय में भी चर्चा करते हैं. चैतन्य महाप्रभु जी ने अपने साथियों को क्या आदेश दिया था? जाए कहो, जाड़े रखो ताए कहो कृष्ण देव. उन्होंने नित्यानंद जी से कहा, मैं तुम्हारे से एक छोटी विनती करना चाहता हूं, मैं तुम्हारे से कुछ भीख मांगना चाहता हूं. पहले मुझे ये कहो कि तुम ये भीख मेरी पूरी करोगे. पहले उन्होंने कहा कि मैं कोई भीख मांगना चाहता हूं, और पहले मुझे ये कहो कि तुम मुझे ये भीख दोगे. तो नित्यानंद ने कहा हां देंगे, क्यों नहीं, आप जो मांगोगे. उन्होंने कहा कि मेरा जो शरीर है ये भी आपका ही है. उन्होंने कहा कि मेरा शरीर आपका है और आप हो मेरे शरीर में आत्मा, और शरीर में आत्मा और विषय के विषय में आत्मा को ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि आत्मा के बिना शरीर जीवित नहीं रह सकता. तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या आदेश दिया? उन्होंने नित्यानंद को आदेश दिया कि तुम जगन्नाथपुरी में मत आओ. साल में एक दफा भी जगन्नाथपुरी आने की आवश्यकता नहीं है. तुम बंगाल में रहो और घर घर जाकर प्रचार करो. तो प्रभुपाद जी इस श्लोक के तात्पर्य में समझाते हैं कि धाम में रहने से ज्यादा बेहतर है भगवान के संदेश का प्रचार करना घर घर जाकर. प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं, मैं आपको पढ़ के बताता हूं. प्रीचिंग चैतन्य महाप्रभु कल्ट फॉर द होल वर्ल्ड इज मोर इम्पोर्टेंट देन स्टेइंग इन वृंदावन और जगन्नाथपुरी फॉर वन्स ओन पर्सनल सेटिस्फैक्शन. स्प्रेडिंग कृष्ण कॉन्शियसनेस श्री चैतन्य महाप्रभु मिशन, देयरफॉर हिज डिवोटीज सिंसियर डिवोटीज मस्ट कैरी आउट हिज डिजायर. द डिवोटीज ऑफ लॉर्ड चैतन्य मस्ट प्रीच कृष्ण कॉन्शियसनेस इन एवरी विलेज एंड टाउन इन द वर्ल्ड. दैट विल सेटिस्फाई द वर्ल्ड. Yeah, that will satisfy the Lord. It is not that one should act whimsically for his own personal satisfaction. So, Chaitanya Mahaprabhu ji, Mahaprabhu ko kya kaha? Nityananda se kaha ki Jagannathpuri mein aane ki aavashyakta nahi hai har saal, par tum Bengal mein hi raho aur wahan ghar ghar jaakar prachar karo. Aur Prabhupada ji is shlok ke tatpari mein samjha rahe hain कि भगवान के संदेश का प्रचार करना वृंदावन या जगन्नाथपुरी धाम में रहने से ज्यादा बेहतर है. ज्यादा बेहतर क्या है? कि आप सदा भगवान के प्रचार में रहो. तो आगे जाकर जो श्लोक आज 65 श्लोक जो आज पढ़ा है उसमें चैतन्य महाप्रभु जी कह रहे हैं कि तुम ऐसा कार्य कर सकते हो जो मैं भी नहीं कर सकता, और तुम्हारे अलावा कोई व्यक्ति मुझे प्राप्त नहीं हो रहा जो कि घोड़ा देश में मेरी इच्छा को पूरा कर सकता है. और इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं किस प्रकार नित्यानंद ने किन का उद्धार किया? जगाई और मनाई. जबकि चैतन्य महाप्रभु जी ने अपना प्रचार का आंदोलन आरंभ किया तो नित्यानंद जी और हरिदास को तो शुरू से ही पता था कि ये कौन है, क्योंकि जैसे आप चैतन्य चरितमृत में पढ़ते हो अद्वैताचार्य हरिदास ठाकुर के साथ भागवत का अध्ययन करते थे और समाज की स्थिति को देखते हुए अद्वैताचार्य ने यह प्रार्थना की थी क्या कि आप स्वयं प्रकट हो कलियुग की प्रजा का उद्धार करने के लिए. और फिर परम भगवान प्रकट हुए चैतन्य महाप्रभु जी के रूप में. तो नित्यानंद हरिदास अद्वैताचार्य उन्हें पूरा ज्ञान था कि चैतन्य महाप्रभु जी स्वयं भगवान है, पर जो नवद्वीप की बाकी प्रजा थी उनके पास ज्ञान नहीं था. तो चैतन्य महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु जी के साथ ही सोच रहे थे कि अगर किसी प्रकार से हम इस शहर के सबसे पतित व्यक्तियों का उद्धार करें तो चैतन्य महाप्रभु जी की महिमा और भी बढ़ेगी. और इस इच्छा के साथ उन्होंने एक सबसे पतित व्यक्ति जो थे नवद्वीप के उनको ये प्रचार किया और उनको ये संदेश देने का प्रयास किया, और जिसके कारण मदाई क्रोधित होकर मदाई ने क्या पत्थर फेंका जो कि भगवान के माथे को लगा, पर चैतन्य महाप्रभु जी अत्यंत क्रोधित थे, पर नित्यानंद ने उन्हें रोक दिया सुदर्शन चक्र उपयोग करने से और कहा, यह है कलयुग का नमूना। और जब जगाए मदाई ने देखा कि नित्यानंद में इतनी निम्रता है तो उनके हृदय में पछतावा उत्पन्न हुआ और वो महाप्रभु जी के बड़े उत्तम कोटि के भक्त बने। तो ये उदाहरण आपने कई बार सुना है और आप प्रभुपाद जी के कई तात्पर्य में ये उदाहरण पढ़ते हो। इस उदाहरण के द्वारा आप ये देख सकते हो कि जो वैष्णव भक्त है वो प्रचार इसलिए करता है क्योंकि उसके हृदय में ये इच्छा रहती है कि परम भगवान की जो इच्छा है वो पूरी किया जाए। जैसे कि इस महीने आप सब जुड़े हो ग्रंथों के वितरण के मैराथन में, उसके पीछे भाव क्या है? भाव केवल यह है कि हम परम भगवान उनके प्रतिनिधियों की इच्छा को पूरा करें। उनकी इच्छा कैसे पूरी हो सकती है? ये दिव्य ज्ञान का वितरण करके। चैतन्य चरितमृत में अनेक प्रसिद्ध लीलाएं हैं भगवान की और उनके भक्तों की, जिनमें यही भाव प्रकट होता है। जैसे कि चैतन्य महाप्रभु जी के एक भक्त थे जिनका नाम था वासुदेव विप्र। वासुदेव विप्र को कोढ़ की बीमारी थी। किसकी? कोढ़ की। और इतनी भारी बीमारी थी कि कोई व्यक्ति उनके निकट भी नहीं आता था। उनके शरीर से सदा बदबू आती थी, इतनी बदबू कि अगर वो सड़क के बाएं तरफ चल रहे होते थे सब दाहिने तरफ हो जाते थे। तो एक समय वासुदेव विप्र चैतन्य महाप्रभु जी को मिलने आए थे और चैतन्य महाप्रभु चल पड़े थे कुर्मा ब्राह्मण के घर से। तो परम भगवान तो अंतर्यामी हैं, उन्हें पता लग गया कि वासुदेव विप्र उन्हें मिलने आए थे और क्योंकि उनका दर्शन नहीं प्राप्त कर सके तो दुखी थे। तो महाप्रभु जी लौटे और लौटते ही उन्होंने वासुदेव विप्र को गले लगाया। और जब गले लगाया तो वासुदेव विप्र की जो कोढ़ की बीमारी थी तुरंत ही समाप्त हो गई। और वासुदेव विप्र बदसूरत रोगी व्यक्ति के बजाय एक खूबसूरत नौजवान का ध्येय उसने प्राप्त कर लिया। तो वासुदेव विप्र को लगा कि अब मैं घमंडी नहीं हो जाऊं, क्योंकि अगर व्यक्ति खूबसूरत हो, धनी हो, प्रसिद्ध हो, ज्ञानी हो तो धनी बन जा गया, गया वो घमंडित बन जाता है। तो इसने चैतन्य महाप्रभु जी से पूछा कि पहले मैं इतना बदसूरत था और रोगी था कि मेरे निकट भी कोई आता नहीं था, अब आपकी कृपा से मैं इतना खूबसूरत बन गया हूं कि मुझे डर है कि मैं घमंडी नहीं बन जाऊं, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो महाप्रभु जी ने क्या आदेश दिया? तुम सदा हरि का नाम लो और आगे हरि के नाम की जो महिमा है वो दूसरों को भी पहुंचाओ। और अगर तुम सदा हरि का नाम लोगे और सदा हरि के नाम की महिमा को आगे पहुंचाओगे तो फिर तुम सदा स्थिर रहोगे और निम्रता के साथ व्यवहार रखोगे। तो प्रभुपाद जी इस घटना के तात्पर्य में समझाते हैं कि जिस प्रकार चैतन्य महाप्रभु जी ने वासुदेव विप्र का उद्धार किया उसी प्रकार इस संस्था के भक्तों का उद्धार हुआ है। और इन संत के भक्तों को क्या करना चाहिए उसके बदले? उसके बदले में उन्हें प्रचार करना चाहिए, ग्रंथ का वितरण करना चाहिए, जिसके द्वारा वासुदेव विप्र के समान जो प्रजा है वो सुखी बन जाए। ऐसे अनेक उदाहरण है। जैसे आप एक और कथा पढ़ते हो, चैतन्य महाप्रभु जी के अनेक भक्त थे, पर अनेक प्रसिद्ध भक्तों में एक थे वासुदेव विप्र और एक थे वासुदेव दत्ता। वासुदेव दत्ता के भाई थे मुकुंद दत्ता, छोटे भाई, और वासुदेव दत्ता बड़े सुंदर गायक भी थे। और कहा जाता है कि महाप्रभु जी को ऐसे लगता था, महाप्रभु जी ने कहा कि कोई व्यक्ति अगर मुझे काबू कर सकता है तो वो है वासुदेव दत्ता। तो वासुदेव दत्ता ने भी जो वैष्णव का सिद्धांत विचार होना चाहिए उसे प्रकट किया और कहा। वासुदेव दत्ता में इतनी दया की भावना थी कि जो छोटी सी कमाई भी वो करते थे वो कमाई को खर्च देते थे, किस लिए? वैष्णव की सेवा में। तो वासुदेव दत्ता ने महाप्रभु जी से कहा कि आप मुझे, मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। तो महाप्रभु जी ने कहा क्या मांगो? उन्होंने क्या मांगा? आप मुझे मेरे ऊपर ऐसी कृपा कीजिए कि आप सारे बद जीवों का उद्धार कर दो और जो उनका परिणाम है वो मुझे भुगतने दो। और आप क्या करो, सब जीवों को कहां ले जाओ? आप उन्हें ले जाओ भगवान के धाम। तो हम जब इन प्रसिद्ध भक्तों के विचारों को सुनते हैं, हम जब इन प्रसिद्ध भक्तों के विषय में पढ़ते हैं, तो इसके द्वारा हम भक्तों में भी उत्साह बढ़ता है। जैसे कि भौतिक संसार में आप प्रसिद्ध भौतिकवादियों के आचरण को देखकर उनकी नकल करने का प्रयास करते हो। कोई फिल्मी कलाकार बनना चाहे तो प्रसिद्ध कलाकारों की नकल करता है, कोई व्यापारी बनना चाहे तो प्रसिद्ध व्यापारियों की नकल करता है। तो इसी प्रकार जहां वैष्णव भक्त हैं, हम इन महान आचार्यों के विषय में, महान भक्तों के विषय में पढ़कर हमारे हृदय में क्या भावना उत्पन्न होती है? ये भावना कि हमें भी उसी प्रकार से इस प्रचार को, की भावना को प्रकट करना चाहिए। तो वासुदेव दत्ता ने महाप्रभु जी को कहा कि आप सबके परिणाम को, जो पापों का परिणाम है वो किसे भुगतने दो? वो मुझे भुगतने दो। और आप सबका उद्धार करो, सबको ले जाओ भगवान के धाम और मैं यहां रहकर सबके कष्टों को भुगतने को तैयार हूं। तो इस प्रकार चैतन्य चतुर्मृत में आप अनेक प्रसिद्ध लीलाएं पढ़ते हो। और यहां कहा जा रहा है इस श्लोक के तात्पर्य में कि गुरु परंपरा की कृपा से जो असंभव कार्य है वो भी संभव हो जाता है। भगवान भगवद गीता में भी इस विषय में कहते हैं क्या कि जो प्रयास करते हैं मेरी सेवा में जुड़ने के लिए, अगर उनमें कुछ कमी भी है तो उसे मैं क्या करता हूं? उसे मैं दूर कर देता हूं। तो प्रचार की सेवा जो है, सब भक्तों में यह भावना होनी चाहिए। और ये नहीं कि हम केवल एक महीने ही साल में यह प्रचार की भावना रखें, हमारे हृदय में एक यह प्रचार की भावना सदा होनी चाहिए। और यह प्रचार की भावना कैसे प्रकट होती है, ये निर्भर है किस पर, किस विषय पर निर्भर है? ये निर्भर है आपके पवित्रता के ऊपर। जितने सावधानी से आप भक्ति की विधियों का पालन करोगे उतने ही अधिक मात्रा में आप में प्रचार की भावना भी उत्पन्न होगी। और रूप गोस्वामी जी ने हमें उपदेशक ग्रंथ में इस विषय में कहा है, भक्ति करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उत्साह, उत्साहित, निश्चय, धैर्य, तत्कर्मक प्रवर्तन, संग त्याग सतर्वेद सद्वीर भक्ति प्रसिद्धि। तो सबसे पहले रूपक समझ कहते हैं कि एक भगवान के सेवा में जुड़ने के लिए हमें क्या उत्साहित होना चाहिए। तो ये जो प्रचार का आंदोलन है, खास करके जो प्रयास किया जा रहा है ग्रंथों का वितरण की जो सेवा हम कर रहे हैं, ये सेवा निभाने के लिए हमें उत्साहित होना चाहिए। और क्या कारण है कि इस सेवा पर बल दिया जा रहा है? इस सेवा पर बल दिया जा रहा है इसलिए क्योंकि इसके माध्यम से आप अज्ञान लोगों को कहां ला सकते हो? भगवान के चरण कमलों में पहुंचा सकते हो। इन ग्रंथों में क्या है? इन ग्रंथों में है भगवान की वाणी, और भगवान की वाणी के साथ क्या है? शुद्ध भक्तों की व्याख्या। प्रभुपाद जी ने इस विषय पर इतना बल दिया था कि प्रभुपाद जी ने कहा कि जब तक इन ग्रंथों का वितरण होगा, जब तक मैं हमेशा जीवित रहूंगा। दूसरे शब्दों में प्रभुपाद जी ने इस विषय पर बल दिया, क्यों? क्योंकि इन ग्रंथों के माध्यम से प्रभुपाद और महान आचार्य जो हैं अज्ञान लोगों को जागृत करते हैं। जैसे कि अगर आप सारे विश्व में अगर लोगों से पूछो कि किस प्रकार वो जुड़े हैं कृष्ण भक्ति के साथ और किस आधार पर वो जुड़े रह रहे हैं कृष्ण भक्ति में, तो आप देखोगे कि अधिक व्यक्ति भक्त जुड़े हैं किस माध्यम से? इन ग्रंथों के माध्यम से। तो इसलिए ये जो ग्रंथों के वितरण की सेवा है, ये है चैतन्य महाप्रभु जी के आदेश के अनुसार, ये है परम भगवान के आदेश के अनुसार। और परम भगवान जो अंतर्यामी के रूप में उपस्थित हैं, वो सदा तैयार हैं क्या? भक्तों के सहयोग देने के लिए वो सदा तैयार हैं, हमें बुद्धि देने के लिए जिसके द्वारा हम भगवान के सेवा में जुड़ सकते हैं। तो इसलिए आप सब भक्तों से ये विनती है कि आप बड़े उत्साह के साथ जुड़िए। जैसे आप जानते हो ये मैराथन शुरू हुआ था कोई 10 दिन पहले, और अब तक मैराथन का 1/3 तीसरा हिस्सा लगभग बीत गया है। तो मेरा यह छोटा सा निवेदन था कि आप सब भक्त उत्साह के साथ मैराथन करते जाओ। और मुझे गोवर्धन प्रभु ने ये स्कोर शीट भी दिया है कि आप सुनना चाहते हो किसने कितना बांटा है? हाँ, अभी तक आप सब भक्त ने मिलकर लगभग 43,000 गीतास बाटी हैं। ये बाटी हैं या ली हैं? व्हाट इज इट? हाँ, 45। अच्छा ठीक है, 45,000 गीतास तकरीबन बाटी हैं। स्कोर सुनना चाहते हो भक्तों का? मैं ऊपर से नीचे पढ़ रहा हूं। अच्छा, तो अभिनंदन प्रभु का है 326 गीता। ताड़ी मत मारो, फिर ज्यादा देर लगेगी क्योंकि आप लोग ने मैराथन के समय छोटी क्लासेस हैं, आप सब 8:30 बजे निकलते हो, अभी 9:45 बज गए हैं। शास्त्र नेत्र प्रभु 1,400 विदुर प्रिय प्रभु 788 राधा सेवक 200 मोहन रूपा एंड भक्त राकेश 30,408 इनके लिए दिस इज जस्ट योर इंडिविजुअल एफर्ट, दिस इज नॉट द कांग्रेगेशन, इज इट? कांग्रेगेशन इज सेपरेट। सो दिस इज जस्ट आजकल मैराथन का महीना है तो क्लासेस है 8 से 8:30 बजे तक होती हैं, तो क्योंकि मधुसूदन सारे भक्त 8:45 बजे निकल जाते हैं. तो 1 रुपये भक्ता राकेश 30,408. आई थिंक भक्ता राकेश पेरेंट्स आर समवेयर हियर, आई सॉ देम. ओके, मधुसूदन प्रभु उनके भक्त, उन्होंने पिछले नौ दिनों में 5,300 गीता बाती हैं. असल में देखा जाए इनका जो प्रयास है सबसे अधिक है, क्योंकि ये बांटते हैं 1-to-1, एक व्यक्ति को एक गीता बांटते हैं. हमारे जो दूसरे भक्त वो भी बांट रहे हैं, पर वो एक गीता की वजह कई बार 10,000 गीता एक साथ बांट देते हैं या 20,000. तो मधुसूदन और उनके साथियों के भारी हैं कि वो इतना प्रयास करें. आत्मतृप्त प्रभु 9 से 10, बाकी जो हैं इतने ज्यादा नहीं हैं. दीनायक प्रभु 140 बस, फिर दीनायक. हरे कृष्ण प्रभु 289, ब्रजनंद वो इंदौर गए 170. कृष्ण प्रिया प्रभु 210 बस. अच्छा, और क्या है? ओके, अच्छा. बाल भद्र प्रभु 460 और परमन केशव 790, महामंत्र प्रभु 3,200. तो ये संक्षेप में है. तो कहने का ये तात्पर्य था कि आप सब भक्तों को उत्साह से प्रयास करते जाना चाहिए, और उत्साह से प्रयास करते जाएंगे तो सब ने जो जिम्मेदारी ली थी वो जिम्मेदारी का हम पूरा कर पाएंगे. तो ये आप सब जानते हो कि आपके मंदिर ने कितने गीता की योजना ली है, 2 लाख. तो अगर आप सब उत्साहित रहोगे और प्रयास करोगे 2 लाख गीता बांटने के लिए, तो आप ये उम्मीद कर सकते हो कि कम से कम 8 लाख लोग, एक गीता को कम से कम 3-4 व्यक्ति पढ़ते हैं, 8 लाख लोग ये गीता को पढ़ेंगे और पढ़कर क्या आध्यात्मिक परिवर्तन होगा. आज भगवान के संदेश के वितरण की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, और जैसे चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा है, चैतन्य महाप्रभु जी ने अपने साथियों को भी आदेश दिया था, अपने शिष्यों को भी आदेश दिया था, और हमारी परंपरा में सारे महान आचार्यों ने भी इस विषय पर बल दिया है. प्रहलाद महाराज जी क्या कहते थे कि जब देखता हूं कि किस प्रकार बदजीव प्रयास कर रहे हैं सुख की दुख की स्थिति को सुख की स्थिति में बदलने के लिए, तो ये स्थिति देखकर मेरे हृदय में क्या होता है, अत्यंत शोक होता है. और इसलिए प्रहलाद महाराज जी ने भी कठिन परिस्थिति में होते हुए भी प्रचार किया. प्रहलाद महाराज की जो स्थिति थी बड़ी कठिन थी, उनके पिता ने चारों तरफ चौकीदार रखे थे, उनको अनेक प्रकार के कष्ट सहना पड़ा. किस लिए? सिर्फ केवल उनमें ये प्रचार का की भावना थी. तो आप सब भक्तों से एक निवेदन है, जो कांग्रीगेशन के भक्तों उनसे भी विनती है कि वो प्रचार के साथ उत्साह से प्रचार करें. और आप सबके हम आभारी हैं कि आप प्रयास कर रहे हो इस मैराथन में अधिक से अधिक ग्रंथों का वितरण करने के लिए. हरे कृष्णा.